अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम् अज्ञान तिम्रांधानां ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः परम गुरुभ्यो नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वंसकं शेयशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री रत्नकरंडक श्रावकाचार्य नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा स्तेषां वचनोनुसार मासाद्य श्रीमद् समंत भद्राचार्य देवैर्विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम कोटिशतम द्वादश्चैव कोट्यो लक्षणानि सीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसंख्या मेतश्रुतं पञ्चपदं नमामि हरिहंतभासियत्थं गणहरदेवै गन्तियं सम्मं पनमामि भक्तियुक्तो सुदनान मगो वयं शिरसा इच्छाएं वन्ते सुदभक्ति काओ सगो को तो सालोचिम अंगो वंग पहिन्ने पाऊने प्रियम्मी सुत्त पनिमानी ओग बुबु गए चूलिया चे सुत्त थे तुविदम कायम सयानिच कालम चेमी पूजेमी वंदामी नमन सामी दुखो को कम को वो इलाओ सुगे गमनम समाही मन्नम जिनुन संपत्ति हो मच्छम नमोस्तु पूर्वानेक्षी स्वाध्याय विलायम श्री आचार्य भक्ति का सुगम करो सपरमत विभावना पटुमतीभ्या सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्या षट्तीस गुण समग्रे पंच विहाचार करण संदर्शे शिष्यानुगये कुशले धम्मायरिय सदा वंदे गुरुभक्ति संयमे नया तरन्ति संसार सायरं घोरम् शिन्नन्ति अच्छुकम्मं जन्नं मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माविरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधुवा शीलप्राभरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा पीनन्तु मां साधुवा गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारुतारणौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका निशाई वन्ते आयुर्भक्तिकाओ सुगो को दसालोचन समनान समदन समचरयुतानं पञ्चविहाचारणम् आयुर्याणम् आयुरादिसुदनानोपदेशानं मध्यायानं तिरुमनुपालनयानं सुभसाऊनं सयानिच कालमन्ति मे पूजयमि वन्दामि नमंसामि दुखो को कम खो इलाओ सुगे उन्नम समय उन्नम जिनु संपत्ति नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते बोले भगवान महावीर स्वामी की आचार्य कुंद कुंद स्वामी की आचार्य समंत भद्र स्वामी की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।
ये रत्नकरंडक शावकाचार आचार्य समंतभद्र स्वामी का अपन पढ़ रहे हैं। हमारे जीवन में धर्म आवे इसलिए हम प्रयत्न कर रहे हैं कि धर्म का जो सच्चा स्वरूप है वो हम पहले समझ सकें। किसी भी चीज़ को अपने जीवन में पाने के लिए ज़रूरी है कि हम उस चीज़ पर पहले श्रद्धा करें, उस चीज़ का ठीक ठीक ज्ञान हासिल करें और उसके अनुरूप अपने आचरण को बनाएं। बिना श्रद्धा का जो ज्ञान है वो हमें भ्रमित कर देता है और बिना ज्ञान का जो आचरण है वो हमें अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा पाता। इसलिए तीनों एक साथ समन्वित रूप से यदि हमारे जीवन में हम प्राप्त कर सकें तो ही हमारा रास्ता आसान होगा। पिछले दिनों हमने ये बात बहुत अच्छे से सीखी है कि बिना श्रद्धा के ज्ञान और आचरण दोनों ही समीचीन नहीं होते हैं, इसलिए श्रद्धा बहुत आवश्यक। लेकिन अकेली श्रद्धा से भी मोक्ष मार्ग नहीं बनता है, श्रद्धा के साथ हमें मोक्ष मार्ग पर चलने की भी तैयारी करना पड़ेगी। और मोक्ष मार्ग पर चलने का मतलब ये है कि जिस तरह भगवान ने अपने जीवन में महाव्रतों को अंगीकार किया उसी तरह हमें भी उनके बताए उस मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए महाव्रत तो स्वीकार करना चाहिए। महाव्रत सब तो स्वीकार करना पाएंगे इसलिए महाव्रतों की भावना भानी चाहिए और महाव्रतों की भावना रखते हुए अपने जीवन में जितना भी जिससे व्रत नियम संयम हो सके कम से कम 5 अणुव्रत तो अपने जीवन में अंगीकार करें। क्योंकि हमारे जीवन में अगर हमें सचमुच शांति और सुख पाना है तो इस मार्ग पर चले बिना हम वो सुख और शांति पा नहीं सकते हैं। जीवन भर हम यहाँ संसार में अपने सांसारिक कार्यों में सिर्फ पाप अर्जित करते हैं और उस पाप के फलस्वरूप संसार में भ्रमण होता रहता है और अपनी आत्मा की सुध जो है वो आती नहीं। जब तक हम पाप में लिप्त रहते हैं अपने आत्मा का स्वरूप भी हम नहीं ठीक ठीक से पहचान पाते हैं। थोड़ा सा जब हम पाप से विश्राम लेते हैं और समय हम बचाते हैं तब उस बचे हुए समय में हम अपने आत्मा के बारे में, अपनी परमात्मा दशा के बारे में और अपनी वर्तमान आत्मा की स्थिति के बारे में, तीनों के बारे में समझना आवश्यक होता है। उसके लिए समय चाहिए। हमारी मौजूदा स्थिति क्या है, हमारा अपना स्वभाव क्या है और हमारे उस स्वभाव की जो अंतिम अवस्था है प्राप्ति, वो परमात्मा दशा क्या है, कम से कम इतना ज्ञान तो हमारे लिए होना ही चाहिए। हमारी मौजूदा स्थिति ये है कि हम शरीर में रहते हैं और शरीर से इतने एकमेक हो गए हैं कि शरीर का सुख दुख ही हमें अपने आत्मा का सुख दुख मालूम पड़ता, शरीर का पतन ही हमें आत्मा का पतन मालूम पड़ता, शरीर का जन्म और मरण ही हमें आत्मा का जन्म मरण मालूम पड़ता है। ये हमारी मौजूदा स्थिति है। हमारा अपना स्वभाव हम भूल गए हैं। अब उस भूले हुए स्वभाव को हमें रोज रोज याद कर लेना है कि नहीं, ये शरीर सो मैं नहीं हूँ, मैं इससे जुदा हूँ और मेरा अपना स्वभाव ठीक शरीर से विपरीत है। शरीर तो अचेतन है, मैं चेतन आत्मा हूँ, जानने देखने की मेरे भीतर क्षमता है, राग द्वेष मेरे विकारी परिणाम हैं, मेरा स्वभाव नहीं है। तो अपने स्वभाव को जान लेना और उस स्वभाव को जान करके स्वभाव की प्राप्ति के लिए उद्यम करना, तब जा करके अपनी उस स्वाभाविक अवस्था को हम प्राप्त हो पाएंगे। वो हमारा गंतव्य है, वो हमारा लक्ष्य है। आत्मा की स्वाभाविक दशा कैसी है तो कहते निर्मल है। इसलिए हम उस निर्मल आत्म दशा को प्राप्त करने के लिए और यहाँ पर व्रत नियम संयम इत्यादि की चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम अपने जीवन में जो बातें भगवान ने कही उनको हम स्वीकार करके अपना जीवन आगे बढ़ा सकें। हमने 5 अणुव्रत अपने जीवन में अंगीकार करने की बात पढ़ी है, समझी है और उसके साथ साथ उन व्रतों की रक्षा करने वाले, उन व्रतों के गुणों को बढ़ाने वाले तीन गुण व्रत हैं, वो भी हमने समझे हैं। अब हम चाहते हैं कि भगवान हमें वो भी बताएं या हम वो भी समझें कि वास्तव में महाव्रतों के द्वारा ही हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। तो महाव्रत एक श्रावक अपने जीवन में कैसे अंगीकार करेगा, तो कहते महाव्रती के समान थोड़ा सा अपने जीवन में उनके जीवन से शिक्षा ग्रहण करने वाले व्रतों को तो हम अंगीकार कर ही सकते हैं। तो श्रावक जो है शिक्षा व्रत भी अंगीकार करे, और वो शिक्षा व्रत में क्या करता है, अपने आवागमन को इतना सीमित कर लेता है कि उसे बाहर कहीं जाने का विकल्प ही नहीं है। पहले जब तक बाहर की यात्रा बंद नहीं होगी, तब तक हम अपनी आत्मा की अंतर यात्रा पर निकल ही नहीं पाएंगे। लगता जरूर है कि हम बाहर भी यात्रा करते रहें और आत्मा का ध्यान भी हो जावे, तो ये आत्म प्रवंचना है, अपने को ठगने का एक अच्छा ढंग है कि हम संसार के सब कामों में लिप्त भी रहें और आत्मा की अकेली चर्चा कर लेवें। तो अकेली चर्चा करने से नहीं होता भैया, अर्चा करना पड़ेगा, हमें उसकी आराधना करना पड़ेगी, और आराधना के लाने अपने पास थोड़ा समय तो होना चाहिए। पांचों इंद्री के विषय और मन के विषय से थोड़ी निवृत्ति तो आवश्यक है, उसी निवृत्ति को तो हम चारित्र कहते हैं। क्या करूं मैं दिन भर में कि प्रवृत्ति के बीच में मुझे निवृत्ति का मार्ग भी सूझता रहे, वरना दिन भर जो है प्रवृत्ति ही चलती रहती, और प्रवृत्ति में भी शुभ और अशुभ प्रवृत्ति में से अशुभ प्रवृत्ति के ज्यादा मौके हैं, शुभ प्रवृत्ति के तो अवसर कम ही हैं। तो श्रावक क्या करे, कहते कि शुभ और अशुभ प्रवृत्ति में से जितना हो सके तो शुभ प्रवृत्ति में मन लगाए, अशुभ प्रवृत्ति से निवृत्त होवे, इतना ही कर सकता। शुभ और अशुभ दोनों से निवृत्त होकर के अपने शुद्ध स्वरूप में स्थिर रहने वाली महान आत्माएं वे तो महाव्रती ही हो सकती हैं इस समय में। और इस समय में भी जो है सभी महाव्रतियों के लिए शुभ और अशुभ दोनों से ऊपर उठ करके और अपने शुद्ध आत्मा की कहना चाहिए ध्यान करना, ये भी उतनी सामर्थ्य नहीं है। ये कहने में तो आ सकता है, लेकिन भीतर के परिणामों को राग द्वेष से रहित वीत राग बना पाना क्षण भर के लिए भी दुर्लभ है, कठिन तो है, आसान इतना नहीं है। तो उसके लिए भी निरंतर तैयारी, उसके लिए भी निरंतर प्रयत्न जो है वो करना पड़ेगा। पर प्रवृत्ति के बीच में निवृत्ति हमारी कैसे होवे, इस बात का जो है श्रावक ध्यान रखता है। ये निवृत्ति के लिए कहते पांच पापों से निवृत्त हो जाने, एक निश्चित समय के लिए पांच पापों से निवृत्त हो जाने का नाम ही सामायिक है। इससे हमें मुनियों के आचरण की शिक्षा मिलेगी। वे तो समस्त प्रकार के पापों से जीवन भर के लिए निवृत्त हो गए हैं, हम क्या करें, हम घंटे भर के लिए तो ऐसा कर ही सकते हैं कि पांच पाप का स्थूल रूप से तो त्याग है ही, सूक्ष्म रूप से भी त्याग कर दिया। मन वचन काय कृत कारत अनुमोदना सामायिक के समय में ऐसी नौ कोटि विशुद्धि के साथ श्रावक चाहे तो एक अंतर मुहूर्त तक शांत भाव से समस्त पापों से निवृत्त होकर के जिंदगी निकल जाए तो पाप नहीं छूटने वाले। संसार ऐसा ही है, आप कहीं भी इस छोर से उस छोर पे चले जाओ, जिंदगी निकाल दो, एक नहीं कई जिंदगी निकाल दो, पाप से निवृत्ति का कोई उपाय संसार में नहीं है इसके अलावा कि हम धर्म ध्यान में अपना मन लगाएं, वरना आर ध्यान रौद्र ध्यान में प्रवृत्ति हमेशा चलती रहती। तो धर्म ध्यान के क्षण हमारे पास कैसे आवें, तो कहते ऐसे आएंगे कि सुबह शाम दोपहर जब भी समय मिले, शुरुआत में, क्योंकि सामायिक व्रत अलग है, सामायिक प्रतिमा अलग है और सामायिक चारित्र अलग है, ये तीन चीजें अलग अलग हैं। सामायिक चारित्र तो एक बार पांचों पापों का त्याग करने से जो आत्मा की निर्मल अवस्था की तरफ हमारा रुझान हो गया, वो जो सामायिक चारित्र है वो तो मुनि जनों के आश्रित है। सामायिक चारित्र गृहस्थ को तो होता नहीं, वो तो आत्मलीनता की स्थिति है। पांच पापों से जीवन भर को मुक्त होकर के जो आत्मलीनता आत्मनिर्मलता आई है कषायों के अभाव में, वो सामायिक चारित्र। और सामायिक व्रत क्या है, तो कहते दो संध्याओं या तीनों संध्या कालों में जो एक एक अंतर मुहूर्त तक श्रावक पांच पापों से निवृत्त होकर के पंच परमेश्वर जी का स्मरण करता है, समता परिणाम रखने की कोशिश करता है। श्रावक संतोषी होवे तब तो समता थोड़ी देर को आ सकती उसके, वरना नहीं आ सकती। असंतोषी व्यक्ति को समता की बात तो रुचेगी नहीं। जो संतोषी है सो श्रावक है, और फिर वो जो समतावान है सो साधु है। श्रावक क्या करता है, संतोषी तो जीवन भर रहता है लेकिन मौके मौके पर समता का अभ्यास भी करता है। कहते समता की साधना का नाम ही सामायिक है। पांच पापों से निवृत्त होके पंच परमेश्वर जी का स्मरण करना, और जैसी इष्ट अनिष्ट वस्तु का उस समय संयोग होवे उस सब में समता भाव रखना, ये निवृत्ति मार्ग है, ये ही सामायिक है। ऐसी सामायिक जो है वो श्रावक के लिए कही गई है कि वो रोज रोज सुबह शाम, ये हो गया व्रत। और सामायिक प्रतिमा वो कहलाती है जिसमें नियम पूर्वक तीन संध्याओं में और अपने आत्मा का चिंतन करता है, पापों से बचता है, ये प्रतिमा हो जाए। उसमें तीनों संध्याओं में कंपलसरी है। सामायिक व्रत में तो ये है कि थोड़ा बहुत समय का फिर बदल भी हो सकता है, और तीन संध्या की जगह पर सुबह शाम दो ही संध्या में भी करे तो कोई बात नहीं, सामायिक व्रत में तो इतने चलेगा। लेकिन सामायिक प्रतिमा तीसरी प्रतिमा लेने पर फिर उसके बाद तीनों संध्याओं में नियम से वो अपने सामायिक को अपने जीवन में अभ्यास करेगा, ये प्रतिमा का। तो इस तरह से अपन पढ़ रहे हैं अभी सामायिक व्रत के बारे में, जान रहे हैं कि समता की साधना ही सामायिक है। कितनी परिभाषा अपन ने बनाई थी सामायिक की, कल थोड़ा सा याद करो। पांचों पापों से निवृत्त होना एक निश्चित समय के लिए, इसका नाम सामायिक। सुख दुख जीवन मरण लाभ अलाभ हानि जय पराजय इन सब में जो है समता भाव रखना एक निश्चित समय के लिए, ये भी सामायिक। एक निश्चित समय के लिए पांच परमेश्वर जी का ध्यान करना या पंच परमेश्वर जी का स्मरण चिंतन करना, ये भी सामायिक कहलाती है। और कहते समयम यस्य प्रयोजनम, कहते जिसमें पंच इंद्री के विषय नहीं अपनी आत्मा ही जिसमें प्रयोजन भूत है, अर्थात जिन क्षणों में हम आत्मा का ध्यान करते हैं या आत्मा का विचार करते हैं वे सामायिक के क्षण हैं, या आत्म स्थिरता आत्मलीनता का नाम भी सामायिक है। इस तरह से अपन ने कल और भी चतुर्दिक वंदना को भी कहीं कहीं पर सामायिक, चारों दिशाओं में शांत भाव से कायोत्सर्ग पूर्वक वंदना करना, ये भी सामायिक में कहीं कहीं पर आचार्य भगवंतों ने शामिल किया है, उसी की प्रक्रिया है इसलिए उसको शामिल। इस तरह और सामायिक के छह भेद किए हैं, वो अपन थोड़े से समझ लें। फिर इसमें पूरी प्रक्रिया बताई है कि क्या क्या तैयारी करनी सामायिक की, और सामायिक में क्या करना। सामायिक की तैयारी भी द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, इन चार को तो कम से कम संभालना ही पड़ेगा, और दो और जोड़ लो नाम और स्थापना। कहते ऐसी छह प्रकार की सामायिक होती है, नाम सामायिक भी है, स्थापना सामायिक भी है, द्रव्य सामायिक, क्षेत्र सामायिक, काल सामायिक और भाव सामायिक। नाम सामायिक क्या है, कहते इष्ट अनिष्ट नाम सुनाई पड़ने पर या शब्द सुनाई पड़ने पर राग द्वेष नहीं करना। इष्ट सुनाई पड़ा तो राग, अनिष्ट कर सुनाई पड़ा तो द्वेष। कहते ऐसा इष्ट अनिष्ट शब्द या नाम सुनाई पड़ने पर राग द्वेष से निवृत्त होना, समता रखना, यही नाम सामायिक है। ये हम 24 घंटे चाहें तो कर सकते हैं, पर नहीं कर सकता श्रावक। तो कहते घंटे भर तो कम से कम ऐसा करो कि कोई कुछ भी कह दे, वे घंटे भर के लिए हमने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया, सामायिक में बैठे थे और उत्ते में किसी ने कहा कि फलाने आए, अब नाम सुन लो अपन ने, अब मन में क्या आएगा, अगर वे अपने हितैषी होंगे तो उनके प्रति राग का भाव आएगा। कहती भाई इस समय सामायिक के समय इसका विकल्प मत करो, ने दूसरे से को करवाओ सामायिक के समय पर, ये सावधानी है, तो नाम सामायिक हो जाती इस तरह से, इष्ट अनिष्ट नाम। इसी तरह स्थापना, अब इष्ट अनिष्ट या मनोग अमनोग प्रिय अप्रिय जो चित्र इत्यादि हैं किसी के भी हों, पशुओं के हैं, मनुष्य के हैं, देवों के हैं, उन सब में कोई कोई अपन को अच्छे लगते, कोई कोई अच्छे नहीं लगते। कहते सब में समता रखना, राग द्वेष नहीं करना उतने समय के लिए, चाहे कैसा भी रूप हो, कैसी भी किसी चित्र में स्थापना की गई हो उसके प्रति राग द्वेष नहीं आवे, समता बनी रहे, तो स्थापना सामायिक हो गई। फिर कहती सचित अचित सभी प्रकार के द्रव्य हैं, उन सब द्रव्यों में ऐसा विचार करना कि ये तो पर द्रव्य हैं, इसलिए उन द्रव्यों को लेकर के राग द्वेष भाव नहीं करना, यही द्रव्य सामायिक। और फिर उसके बाद क्षेत्र सामायिक। अब कोई गांव अच्छा लगता, कोई नगर अच्छा लगता, कोई क्षेत्र अच्छा लगता, तो कहती इष्ट अनिष्ट जो क्षेत्र हैं उनको लेकर के भी और अपने मन में उतने निश्चित समय के लिए राग द्वेष नहीं करना, यही क्षेत्र सामायिक है। और काल हमें तो जी वाली ऋतु अच्छी लगती है, इस ऋतु में तो जरा परेशानी मालूम पड़ती है, तो इस तरह से जो ऋतुएं हैं विभिन्न, या कि सुबह का शाम, दोपहर का टाइम या शाम का समय, इन सब समयों में या कालों में राग द्वेष नहीं करना, यही काल सामायिक। और एक और बची कहते भाव सामायिक। जितने भी राग द्वेष या विकारी भाव हैं वे मेरा स्वभाव नहीं हैं, वे तो विभाव भाव हैं, इसलिए मैं उन विभाव भावों को लेकर के राग द्वेष क्यों करूं, मैं अपने स्वभाव भाव में स्थिर रहूं, ऐसा विचार करना, इसी का नाम भाव सामायिक। देखो इतने प्रकार से जो है अपन अपने को संभाल सकते हैं, अपने परिणामों को सामायिक, परिणामों को संभालने का नाम है, परिणामों को स्थिर करने का नाम, परिणामों को अशुभ से बचाने का नाम और अपने आप में ठहराने का नाम है सामायिक। तो कैसे करें उसके लिए प्रक्रिया बताते हैं। मूर्द्रोह मुष्टिवासो बंधम पर्यंक बंधनम चापी स्थानमुपवेशनम वा समयम् जानन्ति समयज्ञा। हाँ, सामायिक का समय कैसे निर्धारित करें कि कितनी देर करना है, तो कहते जो आगम के ज्ञाता पुरुष हैं समयज्ञा, समय अर्थात आगम को जानने वाले हैं, वे क्या कहते हैं, मूर्द्रोह, एक ही बार पढ़ा शायद अपन ने, हाँ, मूर्द्रोह मुष्टिवासो बंधम पर्यंक बंधनम चापी स्थानमुपवेशनम वा समयम् जानन्ति समयज्ञा। हाँ, समयज्ञा समयम् जानन्ति, आगम के ज्ञाता पुरुष सामायिक का समय जानते हैं। क्या है सामायिक का समय, तो कहते मूर्द्रोह मुष्टिवासो। मूर्द्रोह का मतलब है यहाँ पर केश, बाल हैं, और मुष्टि मतलब मुट्ठी, और बंधनम वासो बंधनम अर्थात वस्त्र का बंधन, गांठ बांध ली दुपट्टे में, ये जब तक बंधी है तब तक हमारी सामायिक। सिर में बाल वगैरह उड़ ना जाए तो उनको बांध लिया, जब जब तक ये बंधे हैं तब तक सामायिक। हाँ, वो खुल जाएंगे, ऐसा बंधन लगाते हैं कि थोड़ी देर के बाद अपने आप स्वेच्छा से एक अंतर मुहूर्त तक के लिए खुल जाएगा, नहीं तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल बांध लो तो फिर परेशानी में खुद पड़ गए, वैसा नहीं। एक सेठ जी की नहीं आती घटना कि उन्होंने क्या विचार कर लिया था कि दीप में जितना तेल है सो 48 मिनट जलेगा, सो जब तक ये जलेगा जब तक हम सामायिक करेंगे, ऐसा उनने समय निर्धारित कर लिया अपना। और सेठानी ने समझा कि अरे सामायिक में बैठे हैं और दीपक ने बुझ जावे, तो उनने उसमें बार बार तेल डालते गए। अब तेल डालते गए तो वो जलता गया, लेकिन इनका तो संकल्प था। अब संकलेश परिणाम होने लगा और सहन नहीं हुआ, तो उसी संकलेश के दौरान आयु का बंध हुआ, तो खोटी आयु बंध गई। तो ये भी जो है ध्यान रखना आवश्यक है कि हमारे परिणामों में संकलेश ना होवे, ऐसा ही हम बंधन इत्यादि या समय निर्धारित करते हैं। तो केशों का बंधन या मुट्ठी सहज रूप से ऐसे बांध के बैठे, थोड़ी देर कितनी देर बैठेंगे उसके बाद अपने आप जो है वो ढीली, ध्यान लगेगा तो अपने आप ढीली हो जाएगी, खुल जाएगी। बस यही हमारा सामायिक का इतना समय है। एक अंतर मुहूर्त इन सब के लिए निर्धारित है, पर ऐसा न कह करके और ये इस तरह बता दिया, मूर्ध रोह मुष्टि वाशो। और पर्यंक बंधनम मतलब पालथी मार के बैठे, तो जितनी देर हमसे सुखासन या पालथी में बैठते बनेगा उतनी देर हम सामाय करेंगे इस तरह, या कि खड़े होने स्थानम केति, या तो खड़े होने का समय निर्धारित कर लिया कि इतनी जितने देर तक हम या उपवेशनम या बैठने के काल को इतनी देर तक बैठेंगे, इस तरह सामायिक के काल को निर्धारित कर लेते हैं। जब तक चोटी में गांठ लगी है, मुट्ठी बंधी है, वस्त्र में गांठ लगी है, पालती बांध कर बैठा हूँ, कायोत्सर्ग में खड़ा हूँ या पद्मासन में बैठा हूँ, तब तक सामायिक करूँगा, ऐसी जो प्रतिज्ञा कर ली वही जो है सामायिक का काल हो गया। असल में ये इसलिए ऐसा करते हैं कि हर व्यक्ति इन चीज़ों के द्वारा एक निश्चित समय तक ही निराकुल रह सकता, जितनी देर तक आपको निराकुलता रहे उतनी। सामायिक के लिए सबसे पहले आसन सिद्ध करना आवश्यक, क्योंकि एक ही आसन में कितनी देर आप बैठ सकते हैं ये बहुत आवश्यक है, नहीं तो 5-5 मिनट में जो है पैर हिलाना पड़े तो फिर उसमें दोष लगता। सामायिक में लिखा हुआ है कि योग दुष्प्रनिधान अनादर स्मृत्यनुपस्थानानी, ये आगे जाकर के कहेंगे, मन वचन काय का विचलित हो जाना या अस्थिर हो जाना ये दोष लगेगा उसमें। तो शरीर को स्थिर रखना पड़ेगा, वचन को स्थिर रखना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे जाकर के मन को स्थिर करने की प्रक्रिया सामायिक में होती, पर पहले तो शरीर ही स्थिर। कई लोगों से 10 मिनट तक पालथी मार के नहीं बैठ सकते, आधे घंटे खड़े नहीं हो सकते एक ही शांत भाव से, नहीं तो चक्कर आ जाए, गिर जाए। तो ये साधना के द्वारा काम बनेगा, ऐसा नहीं है कि आपको ये करना ही है, नहीं, जिसमें आपको सुविधा होवे वो, जिसमें शांति पूर्वक निर्विकल्प होकर के हम कर सकें वैसा अपना अभ्यास कर लेना चाहिए। कोई पालथी मार के बैठ सकता, कोई पद्मासन लगा के बैठ सकता, कोई खड़गासन में खड़े होकर के, जिसको जिसमें आसानी रहे, निराकुलता बनी रहे और आलस भी ना आवे। हाँ, आलस भाव आ सकता है क्योंकि सब काम से निवृत्त हुए और शांति से हाथ पे हाथ रख के बैठो तो उदीर्णा हो सकती है, आलस भी आ सकता है, प्रमाद आ सकता, तो कहती नहीं, प्रमाद आता है तो फिर आसन बदल लो, क्योंकि ज्यादा सुखासन गद्दा पे बैठ के करो तो बहुत आराम मिलेगा, टिक के करोगे तो और आराम मिलेगा, तो थोड़े कठोर उस पर बैठो और आसन सिद्ध करो, तो उससे समय ज्यादा से ज्यादा समय तक, नहीं तो बहुत जल्दी आपका टूट जाएगा सामायिक में ध्यान। आप जितनी देर तक जो है निराकुल रह सको उसके लिए ये सब दिया हुआ है इस तरह। और कहाँ करना चाहिए? शुरू में तो सामायिक का अभ्यास एकांत स्थान में ही करना चाहिए, तो उसी के लिए कहते, क्योंकि वैसे ही व्यक्ति का मन शांत नहीं हो पाता है और अशांति वाला वातावरण होगा, क्षेत्र अगर ठीक नहीं होगा तो उसके लिए आकुलता और अधिक हो जाएगी, तो निराकुल स्थान पर करना। कहते हैं इसमें एकांते सामयिकम्, एकांते सामयिकम् निर्व्याक्षेपे वने सुवास्तु सुचा, चैत्यालये सुवापिचा, निर्व्याक्षेपे वने सुवास्तु सुचा, चैत्यालये सुवापिचा, परिचेतव्यं प्रसन्न धिया। हाँ, सामायिकं प्रसन्न धिया परिचेतव्यं, सामायिक तो प्रसन्न चित्त से की जाने वाली चीज है, या चित्त की प्रसन्नता ही सामायिक है, अगर ऐसा अर्थ निकालो तो और अच्छा है, क्योंकि मेरा मन
अभी तक संसार के कार्यों में संक्लेशित हो रहा था, या तो संक्लेश करता हूँ, मेरे अनुकूल नहीं होता तो संक्लेश करता हूँ, मेरे अनुकूल हो जाता है तो अहंकार कर लेता हूँ, बस दो ही तो आते हैं मुझे करना, अहंकार करना आता है या संक्लेश करना आता है। इसमें तो कष्ट ही है, इसमें दुख माने तो उससे निवृत्त हो सकता। सुख किसमें है जब न संक्लेश है न अहंकार है, शांत भाव से अच्छा हुआ थोड़ी देर को पाप से बच गए, ऐसा मन में आना चाहिए कि ये हमारा सामायिक का हमने अच्छा कर लिया, इससे हमें 10 मिनट निराकुलता तो हो गई, बड़ा मन चित्त बिल्कुल प्रसन्न है। तो सामायिक प्रसन्न चित्त से करना और प्रसन्न चित्त होना ये भी सामायिक ही है एक तरह से, क्योंकि प्रसन्नता किस बात में है जी, नहीं समझना कि पापकारी में प्रसन्नता है, नहीं, पाप को छोड़ने की प्रसन्नता है कि इतनी देर के लिए हमारा पाप छूट गया, हम पाप से बच गए, इस बात की प्रसन्नता है। इसलिए हम प्रसन्न चित्त हो करके सामायिक करें, और कहां करें तो कहते बुद्धि पूर्वक ऐसा स्थान निश्चित करना जहां की परिणामों में आकुलता ना आवे। तो कैसा कहते, एकांते स्त्री पुरुष नपुंसक इत्यादि जो भी हैं पशु हैं उनसे रहित प्रदेश होना चाहिए। एकांत का अर्थ जहां पर और कोई नहीं है, हैं, और निर्व्याक्षेपे जहां पर चित्त की चंचलता के कारण उपस्थित नहीं हो रहे हैं। देखो प्रारंभिक अवस्था की बात है, ऐसा स्थान पहले बुद्धि पूर्वक खोजेंगे, और फिर इसके बाद अपन ने तो अपनी बुद्धि से ठीक स्थान पे बैठे थे और फिर भी उपद्रव हो गया तो समता रखेंगे। लेकिन शुरू से ही ऐसा नहीं कि शुरू से ही अपन उपद्रव वाले स्थान में बैठे और फिर कहें कि मन नहीं लग रहा, नहीं, पहले तो अपन विचार करेंगे कि ठीक स्थान चुनेंगे जिसमें कि निराकुलता अच्छे से सध जाए, फिर इसके बाद भी अगर कोई आकुलता का अवसर आ जाता है तो उसको हम सामायिक के दौरान जीतेंगे, वही तो हमारा अभ्यास कहलाएगा। तो कहते निर्व्याक्षेपे चित्त की चंचलता न बढ़े ऐसे स्थान पर, और बनेसु वन में, अगर हो सके तो जंगल में, अब तो जंगल अपने घरे आ गओ, एक ठो जंगल की फोटो लगा ली और सबरो सामान जितनो भी है सो लकड़ी का सामान है, सो वो सब जंगल ही तो आए और का, उते दू थोड़ी अच्छी लकड़ी नहीं रहती है, आड़ी टेढ़ी रहती, यहाँ उसको अपन ने ठीक पॉलिश वालिश करवा के, फर्नीचर है भी और सब मशीनरी लगी हुई है, वो उसमें सीनरी में भी यही बना रहता है अक्सर जंगल वंगल, तो अब यही है कमरा ही जंगल हो गया कहना चाहिए, सामान से भरा हुआ है। लेकिन यहाँ लिखा है कि वो सब चीजें, तो देखो कभी भी किसी वृक्ष को देख करके किसी को राग द्वेष हुआ, किसी नदी को बहता देख करके, किसी समुद्र के किनारे, जो प्रकृति है, प्रकृति हमारे चित्त को अपने आप प्रसन्न कर देती है, वो राग द्वेष नहीं उपजाती, लेकिन हमारे अपने द्वारा जो चीजें हम व्यवस्थित करते हैं वे हमें राग द्वेष उपजाती हैं, क्योंकि वो कृत्रिम है। तो सामायिक तो हम सोचते हैं कि कृत्रिमता से बच करके और प्रकृति के समीप जाने की प्रक्रिया है, जिस समय हम प्रकृत हो गए अर्थात हम सब बाहर की औपचारिकताओं फॉर्मेलिटीज और कृत्रिमताओं से सबसे बच करके और शांत भाव से, इसलिए लिख दिया कि वनेशु वन में भी जा करके हो सके तो, पहले भरत चक्रवर्ती इत्यादि का तो लिखा ही है, अष्टमी चतुर्दशी को स्मशान में जा करके पूरी रात्रि योग धारण करते थे, सुदर्शन श्रेष्ठ सेठ का आता है कि गृहस्थी में रह करके भी अष्टमी चतुर्दशी के दिन ऐसे स्थान पर जहाँ की निर्विकल्प हो सके जा करके सामायिक करते थे, घंटों घंटों काय स्वर्ग में लीन रहते थे, ये सामायिक की प्रक्रिया। और वास्तु सूचा, अगर मकान में भी, वास्तु मतलब मकान, तो वास्तु में मकान में भी कोई करे तो वैसा भी कर सकता, अपने हिसाब से जिस क्षेत्र में हमारी प्रसन्नता बनी रहे और प्रसन्नता बढ़े ऐसे क्षेत्र में और प्रसन्न चित्त से। कहते चैत्यालय शुवा पिचा, और चैत्यालय में भी अगर हो सके तो मंदिर में बैठ करके हम सामायिक करें, वहां पर और अच्छा क्षेत्र है। देखो ये क्षेत्र की अपेक्षा से देखें तो पहले तो अभी अपन ने क्या पढ़ा था कि इष्ट अनिष्ट मनोग अमनोग जैसा भी क्षेत्र मिले उसमें समता रखना, लेकिन यहां क्या कह रहे कि पहले ऐसा क्षेत्र चुनना जिसमें अपनी समता आसानी से बन सके, इसके बाद भी अगर कोई गड़बड़ी आ जाए तो उसमें भी समता रखना, तो ये क्षेत्र की, पहले पहले अगर देखें तो द्रव की अपेक्षा बता दिया कि मुट्ठी बांध करके या बाल इत्यादि बांध के, नहीं तो आकुलता हो जाएगी उस समय, सब व्यवस्थित करके पालथी मार करके अब शांत भाव से शरीर को पहले व्यवस्थित कर लिया, अब सामायिक शुरू, शरीर की तरफ से निर्विकल्प होकर शुरू कर दिया, इसी तरह क्षेत्र की तरफ से निर्विकल्प होकर के फिर सामायिक करना, ये इसका सामायिक बढ़ाने के लिए ऐसे क्षेत्र को चुने। कौन कौन से क्षेत्र हो गए? एकांत स्थान होवे, जहां पर चित्त की चंचलता न होवे, ऐसा स्थान होवे, वन होवे, प्रकृति के निकट होवे अगर तो और अच्छा है, मकान है तो अपने घर में ही कर सकते, और या कि मंदिर में बैठ करके, और सामायिक को बढ़ाना चाहिए, अर्थात सामायिक को प्रारंभ भी करना चाहिए और सामायिक के समय को धीरे धीरे बढ़ाते जाना चाहिए। देखो व्रत नियम संयम बहुत लोग लेते हैं कि हमने फलानी चीज का त्याग किया, हमने जा चीज छोड़ी, हम कहते भैया ये सब चीजें भी करो, खराब नहीं है, छोड़ो, लेकिन साथ साथ हम तो अबे धर्म ध्यान 10 मिनट करते थे, अब महाराज 15 मिनट करेंगे, हम सामायिक नहीं करते तो हम सामायिक शुरू करेंगे, ये कोई नहीं करता कि सुबह शाम 10-10 मिनट भी नहीं है अपने पास फुर्सत कि 10 मिनट शांति से हाथ पे हाथ धर के बैठें तो विचार तो करें, चलो कुछ नहीं आता है तो कोई पाठ है तो वही मन में, लेकिन स्थिर हो करके करेंगे, इतना भी इसके लिए भी 10 मिनट नहीं है, 24 घंटे में सुबह शाम 10-10 मिनट 15 मिनट निकाल, इसको कोई नहीं बढ़ाता। उनने कही कि हमारा तो एक त्याग है, उनने कि हमारा अब उम्मीद को ढका लग गया तो वो में आकुलता होगा, हाँ भा हरदी डर गई सो हमारा आवाज भोजन गड़बड़ होगा। अरे ठीक है भाई, वो अपनी जगह है कि आपको हरदी नहीं खाने सुनने खाओ, लेकिन आपने सामायिक कितनी करी, सारे व्रतों में श्रेष्ठ ये है, ये इससे परिणामों में निर्मलता, इससे स्थिरता आती है। बाह्य जो अपन त्याग इत्यादि करते उसकी हम बुराई नहीं कर रहे, वो भी करना चाहिए, लेकिन उसी को धर्म ने मान लो, उसके आगे बढ़ो। अब उतना तो कर ही लिया, सब चीजों का त्याग कर दिया आपने, गणंत का भी, हमारा हमें सुनान लगत कई जने आन के, हमारे को त्याग, हमारे को त्याग, हमारे को त्याग, हाँ भैया सो धरे रहो तुम आओ है सो, हम कौन मना कर रहे हमें सुनाने से क्या होने वाला, आपने किया सो आपका उससे हित होने वाला, लेकिन उसके साथ में ऐसी प्रक्रिया जिससे परिणाम निर्मल हो वो भी आवश्यक है, बहुत, मैं तो सोचता हूँ बहुत आवश्यक है। अपने यहाँ पर श्वेतांबरों में तो सामायिक का बहुत प्रचलन, प्रत्याख्यान और सामायिक, प्रत्याख्यान करते हैं वो, मैं 1 घंटे के लिए समस्त पापों का त्याग करता हूँ, प्रत्याख्यान, मैं 1 घंटे के लिए समता परिणाम रखूंगा, सामायिक, ये बहुत आसान उनके यहाँ पर, इसके बिना वो कहते कि श्रावक नहीं है, जो अगर पच्चखांड प्रतिक्रमण और सामायिक ना करे तो, कायोत्सर्ग ना करे तो, और अपने यहाँ पर ये सामायिक और कायोत्सर्ग या प्रत्याख्यान की तो बिल्कुल छूट गई है। अरे मंदिर के भीतर आओ और फौरन मन में चारों प्रकार के भोजन का त्याग, इतने कौन को खाने, तो वही मंदिर के भीतर आए और ध्यान आ गया चारों प्रकार के भोजन का, जब तक मंदिर में हूं तब तक मेरा भोजन का त्याग। देखो मनो संजा को न करी हुए सो कैसे भोजनशाला में आए, मान लू तो मंदिर में दर्शन करने के लिए आए तो कर दिया त्याग के उसके भीतर, या कि मैं मंदिर के भीतर आया, मेरा अशुभ वचन बोलने का प्रत्याख्यान, मैं यहाँ पर किसी के साथ अशुभ वचन नहीं बोलूंगा, किसी की निंदा के वचन नहीं बोलूंगा, किसी के दोष नहीं देखूंगा, अरे घंटे भर के लिए जब तक मैं मंदिर में हूं, ये प्रत्याग, ये सजगता है, व्रति व्यक्ति ऐसा इसके लिए बहुत तैयार रहता हूं, अपने परिणामों को संभालने के लिए व्रति सबसे ज्यादा तैयार है, लेकिन आज जो है इसीलिए तो व्रत नियम संयम लेने वाले का असर नहीं पड़ता, हम आपको सच्ची बताएं, क्योंकि उसके जो बाह्य क्रियाकलाप है वे तो समरे रहते, मनो अंतरंग के परिणाम तो उसके ज्यों के त्यों बने रहते, सुबह के तुम अपना जोई जोई कर लेते, जज ने छी लियो और बोने कर लियो और जो ने कर लियो, अरे परिणाम तो संभालो अपने, तुमने व्रत नियम संयम लिए परिणाम नहीं संभालती, समता रखो, संतोष भाव रखो, कोई भी कह देगा व्रति व्यक्ति से फौरन कह देता, अरे भैया तुम तो व्रति हो समता रखो, तुम्हें तो निंदो बातें करो चाहिए, तो इसमें क्या होता है कि व्रतों की अवमानना हो जाती, व्रति व्यक्ति के माध्यम से व्रतों की अवमानना हो जाती है तो बहुत बहुत पाप का कारण, इसलिए बहुत सावधानी, सामायिक का अभ्यास जरूर करना चाहिए, कहीं भी मंदिर में आकर के एक शांत भाव से बैठ गए, 10 मिनट बैठो, हम कहां कह रहे कि 48 मिनट, जब व्रत ले रहे उसे बैठियो 48 मिनट, अबे 10 मिनट को अभ्यास तो करो, सब कर सकते हैं, सुबह शाम एक निश्चित समय कर लो कि भैया हम तो इतने बजे और सबसे छोड़ करके और बैठे, हमारे तो 7 बज गए, मेहमान भी आके बैठे हैं, तो उनसे कह दिया भैया हमारे 7 बज गए, आप 10 मिनट बैठो, हम थोड़ा। अभी ऐसे लोग हैं कई जो कि अगर कोई बड़े से बड़े साहब भी आके बैठ जाए तो उनसे कह देते भैया 7 बज गए हैं, आपको वैसे हमने कहा था कि आप थोड़े हमारे उस समय पर नहीं आइएगा, फिर भी आप आए हो सो बैठो, आपकी खातिरदारी हम करेंगे, लेकिन हमारा 7 बज गया, कोई संकोच वाला काम नहीं, क्या फिर कर लें, जो काम डरो पहले जो करने, नहीं, कहां की रिश्तेदारी, इससे बड़ा रिश्ता क्या हो सकता कि हम भगवान से जुड़ने जा रहे हैं, आप थोड़े बैठो, आपसे हम अभी बात करेंगे, लेकिन हमारे 7 बज गए तो आप बिल्कुल, एक एक बायोलॉजिकल क्लॉक भीतर में स्थित होना चाहिए। मैं आपको एक प्रक्रिया कभी बताऊंगा, हो सकता कल ही, कि कैसे हम सामायिक के लिए जो अपना एक पैटर्न है उस पैटर्न को करें तो बिल्कुल आसानी से 10-15 मिनट तो निराकुल हो ही सकते हैं, और वो आनंद अगर एक बार आ गया, असल में एक बात ये भी है कि अगर इन चीजों का अपन को एक बार ललक लग जाए, आनंद आ जाए, तो फिर कोई कुछ भी कहता रहे फिर नहीं छूटती। असल में जी सब करने के साथ अपन को आनंद आया नहीं तो फिर जो है उतना उत्साह भी नहीं रह जाता। इसलिए सामायिक इत्यादि का जो सही प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से करो और उसका आनंद आवे तो फिर तो, जैसे कि किसी व्यक्ति को टेलीविजन का आनंद आता तो वो तो कहूं से भी जो है कोई भी होए अपना वो निकाल लेता उसमें से वो चीज, नहीं, इसी तरह ये आना चाहिए इसमें भी। तो इसको बढ़ाने की चेष्टा करें, सामायिक को अंगीकार करें और सामायिक को बढ़ाएं। इतना ही मेरे ख्याल से अपने लिए पर्याप्त है। अपने परिणामों को निर्मल बनाने के लिए ये बहुत अच्छा उपाय है कि हम एक निश्चित समय पर एक निश्चित जगह पर बैठ करके और अपने निराकुल होने का भाव करें। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुर विद्यासागर मुनि महाराज।